मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते सहे अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सब लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए इस बात पर विचार कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक विचार कर लिया है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी दृष्टि निर्मल हो, हमारा ज्ञान सच्चा हो और हमारा आचरण अच्छा हो। ये तीन चीजें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। दृष्टि की निर्मलता के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। दृष्टि की निर्मलता के लिए हमने पहला प्रयत्न किया कि जो वीतरागी देवगुरु शास्त्र हैं उनके प्रति, उनके चरणों में बैठकर अपन उनसे कोई संदेश लें, वीतरागी भगवान से वीतरागता का संदेश लें, निर्ग्रंथ गुरुओं के द्वारा हम समता का पाठ सीखें और जिनवाणी का अध्ययन करके हम अपने अज्ञान को दूर करें, अपनी कषायों को बंद करें। संसार शरीर और भोगों के बारे में उनकी वास्तविकता क्या है, इनकी वास्तविकता भी समझने की अपन ने कोशिश करी और सारी बात समझने के बाद हमारी दृष्टि पर जो अंधेरा छाया हुआ था, जो पर्दा पड़ा था, वो हट गया और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे भीतर निर्मल दृष्टि हो गई है, हमारी दृष्टि निर्मलता को हासिल कर गई। जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है उसके जीवन में गुणवत्ता आना शुरू होती है, उसके गुणों का विकास होना शुरू होता है। जो हमारे भीतर श्रद्धा है जिनेंद्र भगवान के प्रति, तो जिनेंद्र भगवान के जो भी वचन हैं उनमें हमारे लिए कोई संदेह नहीं है, ऐसा हमारे भीतर भाव आता है। भले ही हम अज्ञानी हैं, नहीं जानते कि सात तत्वों का स्वरूप क्या है, कैसा है, लेकिन भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहे गए सात तत्व ही सच्चे हैं और उनका जैसा स्वरूप भगवान जिनेंद्र ने कहा है वैसा ही स्वरूप है, न दूसरा है न कि अन्यथा है, विपरीत भी नहीं है। ऐसा श्रद्धान जो कि शंका से रहित है वो अपन को हो गया, अपन ये मान के चल रहे हैं। एक कदम और आगे बढ़े और गुणवत्ता हमारे जीवन में आई। अब हम छोटी छोटी सी संसार की आकांक्षाओं में पढ़कर अपने धर्म ध्यान से विचलित नहीं होते। अब हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो कर्तव्य कर रहे हैं उन कर्तव्यों को प्रायोरिटी देते हैं। भौतिक सुखों को अभी तक प्रायोरिटी देते थे लेकिन अब भौतिक सुखों की अपेक्षा आत्म सुख के लिए हमने सच्चा मान करके प्रयत्न शुरू कर दिया है, ये हमारा निक्षांक्षित गुण हमारे भीतर प्रकट हो गया। लेकिन हमारे भीतर एक चीज अभी पड़ी हुई है, वो ये है कि हम शरीर को ही देह मान लेते हैं। हालांकि शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन मैं पहले दोनों एक ही बोल गया। हालांकि शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। ऐसा कभी कभी संस्कारवश हमारे भीतर भाव आ जाता है। लिखा हुआ है कि देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। तो हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगना शुरू क्या होता, धीरे धीरे सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। यदि हम शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं, शरीर के सुख में ही आत्मा का सुख मानते हैं, शरीर के उत्पन्न होने को ही आत्मा का उत्पन्न होना और शरीर के मरण को ही आत्मा का मरण मान लेते हैं, तो ये हमारी दृष्टि फिर से मलिन हो गई। हमारे भीतर इस तरह के भाव कई बार आ जाते हैं जो हमारी दृष्टि को मलिन बनाने वाले। हम इन भावों से सावधान रहें। किसी के जन्म पर हम कितने प्रफुल्लित हो जाते हैं, क्या आत्मा का जन्म हुआ या कि शरीर का, थोड़ा सा भीतर में अपने ये विचार आना चाहिए। किसी के मरण से हम विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और अगर हमारा कोई परिचित हो और उसका मरण हो गया हो तो बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। वैसे चींटी मर जाए तो ऐसी तो बहुत मरती रहती है, अपन को कोई दुख नहीं होता किसी के मरने से, वो अपने मोह की वजह से हमको दुख होता है। जिससे हमारा परिचय है उसका अगर मरण होता है तो उससे हमारा स्वार्थ सदता था, अब वो स्वार्थ नहीं सदेगा, इस वजह से मुझे दुख पहुंचता है। किसी के मरने से दुख हो ऐसा नहीं है, मरते तो बहुत सारे लोग हैं, अगर मरने से दुख होता होता तो मेरे मोह की वजह से, मेरी अज्ञानता की वजह से मेरी दृष्टि पर मलिनता छा जाती है और उस वजह से मैं शरीर मरा है लेकिन यह सोचकर कि आत्मा मरण को प्राप्त हो गई ऐसा विचार कर लेता हूं और हर्ष विषाद करके अपनी दृष्टि को मलिन करता हूं, जबकि शरीर अलग है आत्मा अलग है। मैं विनोवा का इतने बार उदाहरण देता हूं, आपको लगता होगा कि क्या कोई उदाहरण नहीं मिलते। मैंने गीता प्रवचन में जब पढ़ना शुरू किया तो विनोवा ने जो गीता प्रवचन लिखे उसके सबसे पहले एक वाक्य लिखा है कि जो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है उसके जीवन में तो अभी धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई। ऐसे भेद विज्ञान से युक्त कौन व्यक्ति हो सकता है जिसकी दृष्टि निर्मल हो गई। वरना तो देह और जीव को एक मानने वाले 99% लोग इस संसार में मनुष्य होते हुए भी और सचेत नहीं हो पाते, यही मान के और अपना जीवन पूरा कर देते हैं, शरीर के ही सेवा में लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, अपने आत्मा की खबर कर ही नहीं पाते। ऐसे पर समय जिनको आचार्य महाराज पर समय मानते हैं उनकी संख्या बहुत है। जीवो चरित्र दंशन नानठ्यु तम ही स्वसमयम जान पोगल कम पदेसठियम ततम जान पर समयम। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से युक्त है, जो भेद विज्ञान से युक्त है, वही सौ समय है। शेष तो जो अभी शरीर को ही अपना मान रहा है या शरीर को ही आत्मा मान रहा है और कर्मों में हर्ष, कर्म के फल में हर्ष विषाद करके रंजायमान हो रहा है, वो तो पर समय ही है। श्रीमद रायचंद हुए, उनके जीवन का एक उदाहरण है। चले जा रहे थे अपने मोक्षों के साथ, रस्ते चलते भी वे तत्व का उपदेश दे देते थे, गप सप नहीं करते चलते थे। जैसे अपन दो जने मिल जाएं तो कभी तत्व की बात नहीं करेंगे, यहां वहां की बातें बहुत करेंगे। चले जा रहे थे या तो चुप और या फिर कोई तत्व चर्चा करते हुए जाएंगे। अचानक सामने से एक मां एक घड़ा सिर पर रखे और एक घड़ा हाथ में लिए चली आ रही, ऐसा दिखाई पड़ा। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि बहुत बड़ा जो घड़ा है उसमें तो छाछ होगा और जो छोटा सा घड़ा हाथ में लिए है उसमें तो नवनीत होगा, मक्खन होगा, घी होगा। एक कॉमन सेंस की बात है। तो श्रीमद रायचंद ने ऐसे सामान्य ज्ञान से परख करके अपने मुमुक्षों से पूछा कि अगर इस मां को कदाचित ठोकर लगे या धक्का लगे और इसके दोनों घड़े गिरने की नौबत आ जाए तो बताओ ये बड़े सिर पर रखे वाले घड़े को बचाएगी कि जो हाथ में लिए है उसे बचाएगी? अरे इसमें कौन सी बात है, सारे मुमुक्षु जितने थे उनने कहा ऐसी कैसी बात, पूरे इतनी आसान सी बात, सीधा सीधा है कि छाछ वाले घड़े को तो गिर जाने देगी, कोई वेस्टेज नहीं होने वाला, लेकिन बचाएगी तो घी के घड़े को बचाएगी, ऐसा उन लोगों ने कह दिया। रायचंद जी ने कहा कि यही उपदेश मुझे तुम्हें देना है कि जब जब भी ये शरीर मरने लगे तो इसकी चिंता उतनी नहीं करना जितनी कि घी के घड़े के समान आत्मा की चिंता करना। लेकिन हम लोग ऐसी दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जितनी चिंता अपन देह की करते हैं उसकी 1% भी आत्मा के उत्थान की फिक्र नहीं करते। अगर आत्मा के उत्थान की चिंता करने लगे और शरीर की मलिनता को ध्यान ना दें, यही तो एक गुण है सम्यक दृष्टि का, निर्विचिकित्सा। मुनि तन मलिन देख घिनावे, स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। ये शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है, इसको कितना भी नहलाओ धुलाओ ये कभी पवित्र नहीं हो सकता, स्वच्छ हो सकता है, स्वच्छता अलग चीज है, सैनिटेशन अलग चीज है, प्योरिटी अलग चीज है, पवित्र नहीं हो सकता ये शरीर, स्वच्छ जरूर हो सकता, मैं इसे पवित्र बनाने की कोशिश करता हूं लेकिन ये तो स्वभाव से ही अपवित्र है। 9 द्वार इसमें बह रहे हैं जो कि घिनावने हैं, जिनसे कि मलिनता ही निकलती है और हम इसको कैसे पवित्र मान लें? लेकिन पवित्र भी है, कैसे पवित्र हो जाता है यह शरीर? रत्नत्रय पवित्रते, इसके भीतर जो बैठा हुआ आत्मा है वो अगर रत्नस्तर से युक्त है तो उसकी देह भी पवित्र है, उसकी देह को भी प्रणाम इत्यादि करके। प्रणाम किसको कर रहे हैं आप? देह को कर रहे हैं प्रणाम? मुनि महाराज जी को प्रणाम करते हैं तो देह को प्रणाम करती या उनके भीतर जो रत्नत्रय विद्यमान है उसको प्रणाम करते हैं, उनके गुणों को प्रणाम करते हैं? गुण प्रीतिर मता, जो भीतर में रत्नत्रय गुण है उन गुणों को प्रणाम करें, उन गुणों से प्रेम रखें, शरीर की मलिनता या उज्ज्वलता की तरफ ध्यान नहीं दें, क्योंकि शरीर तो हमेशा से अपवित्र ही है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। एक मैसेज ये है और दूसरा ये कि दिन रात अपने शरीर को पवित्र बनाए रखने की भावना अगर अपने भीतर है तो वो पवित्र नहीं होगा। पवित्र होता है अपने आत्मा के गुणों से। मैं अपने शरीर को पवित्र बनाऊं, कैसे बनाऊं? रत्नत्रय धारण करके पवित्र बनाऊं, ब्यूटी पार्लर में जाकर के सुंदर बनाऊं? ये तो मेरी दृष्टि बहुत अज्ञानतापूर्ण है। मेरे चेहरे का सौंदर्य चेहरे पर सजावट करने से नहीं होगा, चेहरे पर गुणों के द्वारा जो तेज झलकता है आंखों में और चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उससे सुंदरता बढ़ती है, या कि सिर्फ थोड़े से रंग रोगन ही कहेंगे, पोत लाए से होत कछु, बिल्कुल नहीं दिखता सुंदर। अगर कोई ब्यूटी पार्लर से भी मेकअप करवा के आया हो और उसके बाद उसके चेहरे पर गुस्सा हो तो अच्छा लगेगा चेहरा? सुंदर नहीं लगेगा। और अगर किसी का चेहरा ब्यूटी पार्लर से उसने मेकअप भी नहीं करवाया फिर भी हंसता हुआ हो, देखो छोटे से बच्चे कितना इंप्रेस करेगा वो अपने को, अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका एक गुण जो मुस्कुराहट है, भीतर की निर्मलता और उज्ज्वलता को प्रकट करने वाली है, वो हम देख रहे हैं, या कि उसकी देह की सुंदरता देख रहे हैं। देह को सुंदर बनाना हो तो अंतरंग के गुणों से सुंदर बनते हैं। ये दृष्टि अपने भीतर आ जाए तो अपन देह की सुंदरता और कुरूपता को नहीं देखेंगे, बल्कि अंतरंग के गुणवत्ता को देखेंगे। ऐसी दृष्टि जिसके सम आ जाती है वही निर्विचिकित्सा अंग से युक्त सम्यक दर्शन है, वही दृष्टि की निर्मलता निर्विचिकित्सा गुण से युक्त है। होना यही चाहिए। श्री कृष्ण जी अपने भाई बलराम के साथ रास्ते से चले जा रहे थे, वहां पर अचानक क्या हुआ कि उनको दोनों जन को बहुत गंध आने लगी। बलराम ने अपनी नाक बंद कर ली, श्री कृष्ण जी बिल्कुल वैसे ही बढ़ते गए आगे। देखा सो एक कुत्ता मरा पड़ा था जिसमें से गंध आ रही थी। सो गंध बंद कुछ की तरफ ध्यान नहीं गया, काहे पर ध्यान गया, बलराम से बोले कि भैया देखो तो इस कुत्ते के भले ही मर गया है लेकिन दांत कितने सुंदर है। मेरा ध्यान दुर्गंध की तरफ नहीं है, मेरा ध्यान उसकी गुणवत्ता की तरफ है। अगर तब तो अपनी दृष्टि निर्मल कहलाएगी, लेकिन आज के समय में गुणवत्ता की दृष्टि, दो गुण देखने की दृष्टि नहीं है, दोष दर्शन की दृष्टि, या कि शरीर पर ही आंख रुक जाती है, भीतर के गुणों को परख नहीं पाती। अब अपन जीवन साथी भी अपनी चुनते हैं, विवाह इत्यादि जो जैन धर्म के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान है वो भी करते हैं, तो क्या देखते हैं? बाहरी ताम झाम, पैसा देखेंगे, हाइट देखेंगे, मोटापा देखेंगे कि पतले हैं कि मोटे, ये सब चीजें, फेयर कलर है कि नहीं है, ये सब बाहरी चीजें हैं। मेरे भीतर मुझे देखना चाहिए कि गुणवत्ता है कि नहीं। पहले के लोग जब विवाह के लिए तय करने जाते थे तो क्या पूछते थे? मोड़ी खो भक्तांबर आउट के नहीं पूछते कि नहीं है, तत्काल सूत पर वो आउट के नहीं, मंदर जात है कि नहीं, रोटी बना ले घर में कि नहीं। जो सब कछु आत हो तो ठीक है, कैसा भी रूप हो, लेकिन आज के समय में ये कुछ भी नहीं आता हो लेकिन रूप बहुत अच्छा हो तो फिर, और पैसा भी दे रहे हो अगर तो फिर ब्याह अब ही कर लो, ब्याह नहीं हो जाएगा, निकर आ इतवार हो गए तो इतवार को बहुत जल्दी निकर याद ब्याह। पंडित जी भी हैं उसी तरह के निकालने वाले, मुहूर्त निकालने वाले, ये वाले पंडित जी नहीं, जिन निकालते मुहूर्त मुहूर्त इस तरह के, दूसरे जो पंडित जी निकालते हैं पैसे के लिए कि बहुत अपन उनकी सुविधा से मुहूर्त निकाल देते। किस वजह से? अपनी दृष्टि बदल गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपन ने ये दृष्टि अपने भीतर बदल ली है, अपनी दृष्टि बाह्य वस्तुओं पर हो गई, शरीर पर हो गई, और शरीर की आपके सौंदर्य और कुरूपता पर ही अपनी दृष्टि टिक गई है। आत्मा गुणवान है, इस तरफ अपना ध्यान ही नहीं जाता, थोड़ी दृष्टि परिवर्तित करें। जो चल रहा है उस बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, किसका हाथ पकड़ेंगे, लेकिन हम अपने आप को संभाल सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी दृष्टि को बदल करके अपना जीवन ऊंचा उठा सकते कि चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो लेकिन मैं तो ऐसे दृष्टि से संपन्न होकर निर्विचिकित्सा गुण को धारण करूंगा अपने जीवन में। ये ललक अपने आप पैदा हो जानी चाहिए, तब जाकर के दृष्टि की निर्मलता के साथ निर्विचिकित्सा गुण अपने भीतर उत्पन्न होगा। ऐसा अपन प्रयत्न करें। मुनि महाराज जी को देख करके कम से कम, वैसे तो लिखा है जो दून करे दि दुगुंछम चेदा सव्वेसी मेव धम्मानम सो निबिदिगिंचो साहू सम्मा दिट्ठी मुनि दब्बो। कुंद कुंद आचार्य महाराज के चरणों में बैठे तो वो यही परिभाषा बताएंगे कि जो किसी से भी सुगंध और दुर्गंध से भी दोनों के बीच में समता रखता है, किसी से भी घृणा नहीं करता, किसी वस्तु से किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करता, जो सब पदार्थों के प्रति वास्तविकता क्या है ये जानता है, वही सम्यक दृष्टि है, निर्विचिकित्सा अंग से युक्त है। उतना ऊंचा अपन के ऊपर नहीं आ पाए, अगर वैसी दृष्टि ना आ पाए उतनी ऊंची, तो कम से कम इतना तो हो जाए
कि जो गुणों से युक्त हैं, रत्नत्रय से युक्त हैं, उनके शरीर की मलिनता देख करके अपने मन में घृणा का भाव उत्पन्न ना हो। भैया, शरीर को अपन जितना महत्व दे रहे हैं काय की वजह से दे रहे हैं, भीतर बैठी हुई आत्मा की वजह से। वरना तो जिससे अपन प्रेम करते हैं उसकी ही देह में से उसके निकल जाने के बाद देह को नहीं पूछते, घर में से बाहर करते कि जल्दी ले जाओ मर घटा निकालो बाहर। उस देह से प्रेम नहीं है अपना, उस देह में बैठे हुए देही और आत्मा से, उसके गुणों से अपना प्रेम है। और जब उसमें से देही या आत्मा निकल जाता है तो उस देह को कोई नहीं पूछता। ये अपने भीतर दृष्टि होनी चाहिए। मैं देह की स्वच्छता के लिए तो प्रयत्न करूं, क्योंकि देह गंदी हो जाएगी तो मुझे ही पसंद नहीं आएगी, बदबू आने लगेगी उसमें से, तो मैं देह को तो स्वच्छ करूं, लेकिन आत्मा की पवित्रता के लिए भी दिन भर में थोड़ा सा प्रयत्न करूं। दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूरख प्रीति बढ़ावे, राचन योग न स्वरूप, राचन योग स्वरूप न जाको विरचन योग सही। इस देह का स्वभाव तो कैसा है, दुर्जन के समान। उससे प्रेम करना दुर्जन से प्रेम करना है और उसकी दुर्जनता को बढ़ावा देना है। जैसे दुर्जन आदमी सज्जन का भी विरोध करेगा, दुर्जन का लक्षण ही यह है। जब विनोबा से पूछा गया था कि सज्जन और दुर्जन की परिभाषा का बनाएंगे, जो सज्जन के साथ भी दुर्व्यवहार करे वो दुर्जन, और जो दुर्जन के साथ भी अच्छा व्यवहार करे वो सज्जन। बहुत जल्दी से उन्होंने दो लाइन में दो परिभाषाएं दे दी थी। अपन भी देखें कि कौन दुर्जन है। मेरी देह ही दुर्जन है, सबसे पहले वो मेरी सज्जनता को नष्ट करती है, मेरे आत्मा के गुणों को नष्ट करती है, ये तो दुर्जन ही है। इससे प्रेम रखने से क्या होगा, इसमें राग नहीं करना बल्कि इससे विरक्त होकर के तपस्या में इसको लगा करके और इसके माध्यम से अपने चेतना का विकास करना चाहिए। ऐसा अगर अपनी दृष्टि आ जाती है तब तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा, अपन अपने जीवन को बहुत ऊंचाई दे पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे। भैया, एक छोटी सी घटना है, आप हंसना नहीं है, पहले ही बता दिया। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति को मिठाई खरीदना थी, वो मिठाई वाले के यहां पर गया, उसने मिठाई खरीदी। मिठाई वाले ने, अब की बात अलग है कि पॉलीथिन में देते, पहले तो दोना में देते, सो मिठाई को एक जल्दी से दोना उठा करके और उसमें मिठाई रख करके पकड़ा दी। सो उसने, जिसने मिठाई खरीदी उसने भी हाथ पर ले लिया, और हाथ पर ले करके वो आया था कार में बैठ करके, सो दोना हाथ में लाइन है, कार को दरवाजा खोल के वो कार में बैठ गया। दोना ने कहा कि भैया घूरे के भी दिन फिर गए। दोना ने मन ही मन सोचा कि देखो इतने सावधानी से हमें उठाओ, कचरा में डरे थे, इतने सावधानी से उठाओ, और फिर बाद में उसने भी हाथ में लिया, और अब हाथ में तो ठीक ही है, हमें तो कार में घूमने को मौका मिल जाओ, बड़ा खुश। दोना कार की यात्रा करके बड़ा खुश। जब कार में से वो अपने घर में उतरा तब भी हाथों हाथ लिए, और जब उसने आपके ट्रे वगैरह में दोने में मिठाई को सजा करके और सामने वाले को, मेहमान को दिया, तब भी उसने बड़े प्यार से हाथ में लेकर के मिठाई खाई, तो दोना बड़ा खुश कि मेरी बड़ी इज्जत हो रही, देखो मेहमान ने भी मुझे हाथ में ले लिया, किसी ने जमीन के नीचे नहीं डाला। ऐसा मन ही मन वो अपने उत्थान की कल्पना कर रहा है, लेकिन यह उसकी अज्ञानता है। थोड़ी देर के बाद जब मेहमान ने उस दोने में रखी हुई मिठाई को पूरा खा लिया, तो दोना को दबा करके जब फेंका, तब समझ में आई कि हमारी कीमत काय की वजह से हती, हमारी ये में धरी थी जो मिठाई ये वजह से कीमत हती, मानो हमारी कछु कीमत नहीं थी। ठीक इसी तरह अपन विचार करें कि मैं अपने शरीर की इतनी सेवा कर रहा हूं काय के लिए कर रहा हूं, मैं इसमें बैठी हुई आत्मा के उत्थान के लिए कर रहा हूं। बाकी इसी वजह से मुनि महाराज जी भी इस शरीर को आहार इत्यादि देते हैं तो काहे के लिए देते हैं, न तेजोट्ठम न बलट्ठम न आयुअट्ठम, मैं पहलवान हो जाऊं, मुझे बहुत बलवान हो जाऊं, मेरी जीवन में आयु और अधिक बढ़ जाए, इसके लिए नहीं, तपट्ठम, मैं तपस्या कर सकूं, मैं और साधर्मी जनों की सेवा कर सकूं, भैया व्रत कर सकूं, इसके लिए आहार ग्रहण करते, इसके लिए इस शरीर की रक्षा करते। सबसे ज्यादा ध्यान अगर कोई रखता है शरीर का तो मुनि महाराज ही रखते हैं। संभल करके चलेंगे इस शरीर के द्वारा किसी जीव का घात ना हो जाए, या कि सीढ़ी उतरते समय खटाखट नहीं उतरेंगे, अगर गिर गए तो जिस शरीर टूट जाएगा तो फिर मैं धर्म ध्यान कैसे कर पाऊंगा। इतनी सावधानी शरीर के प्रति रखते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि अपने आत्म कल्याण के लिए शरीर का उपयोग करने की है। अपन और टॉनिक खा खा करके इस शरीर को मोटा तगड़ा बना करके काय के लिए, विषय भोगों के लिए, और अधिक धन पैसा कमा सकूं, अगर बीमार सीमार हो जाए तो 8 दिन खटिया पे पड़े रहने पड़े, सो दुकान ही में चल पे, इसलिए बढ़िया से दवाई वाई लेके दुकान पे बैठो, अच्छी दुकान चलाएंगे। अपनी दृष्टि में इस संसार के भौतिक सुख पाने के लिए ही शरीर की सेवा है, लेकिन वास्तव में तो शरीर की सेवा अगर अपन करते भी हैं तो अपने आत्मा के विकास के लिए अगर करते हैं तो ये ऐसी दृष्टि ही निर्विचिकित्सा से युक्त और सही दृष्टि कहलाएगी। अपन भी ऐसी दृष्टि प्राप्त करें इसी भावना के साथ कि हम सब दृष्टि की निर्मलता के साथ मुनियों के शरीर की मलिनता को देखकर उससे घृणा नहीं करेंगे। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर ने, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता
हूँ, अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वन चारी चरते हो,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप सैल नदी तट पर तर तल वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़ियां,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां,
दिन रात लुटाया करते वो शम शम की अविनश्वर मणियां,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम,
उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधोप पलार्ग कै
धवल मंगल गान रवाकुल
जिने ग्रहे मुनि राज महम। ओम ब्रीम आचार्य श्री विद्यासागर महाराज संगस्ते मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भूमि सागर जी महाराज चरणों में अर्घ्य निर्पणते स्वाहा।
मिथ्यातम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर पास वेखो भानु शिव कानी है शौ द्रव्य जान वेखो
मंद विधि भान वेखो स्व पर पहचान वेखो परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को काबू न सताए वे को भव्य उरानी है
जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है
वाणी के जानते सूझे लोका लोग तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुगो
हे जिनवाणी
पार की तो ये जपो दिन रेन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन।